3 परमेश्वर के परिवार के द्वारा उनके साथ विश्वासघात किया गया। बाइबिल में इसराइल का इतिहास तो विजय और दुख से भरी हुई बातों की एक लंबी सर्पाकार घटना है। परमेश्वर को आश्चर्य नहीं हुआ था। लोगों के पास से कैसी अपेक्षा रखनी है यह परमेश्वर जानते थे। परमेश्वर जानते थे कि वे किसका सामना कर रहे हैं। लंबे समय तक एक ही स्थल पर रहकर थक जाना। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि उसकी संतानों का जीवन समस्याओं से भरा हुआ होगा। परमेश्वर ने ईमानदारी पूर्वक अब्राहम से कहा था कि यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। उत्पत्ति 15:13। यह एक बुरा संदेश था। फिर भी परमेश्वर ने आशा दी थी कि फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15:14। अब्राहम की संतानें वास्तव में तो उसके पोते याकूब, जिसका नाम बदलकर इसराइल किया गया था, उसकी अगुवाई में मिस्र देश में फिरौन राजा के अधिकार के नीचे आ गए थे। निर्गमन 1। अकाल से बचने के लिए परमेश्वर की अनुमति में वे लोग वहां गए थे। उत्पत्ति 45:5-11। उन्होंने जो गलत काम किया था वो तो यह था कि अकाल का समय पूरा होने के बाद उनको वहां से वापिस आ जाना चाहिए था, मगर वे लोग वापिस नहीं आए। वे बड़े लंबे समय तक मिस्र में ही रहे। मिस्र में इसराइलियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि फिरौन राजा को ऐसा लगा कि अब देश के राजा के तौर पर रहना कठिन होगा। निर्गमन 1:8-10। इसलिए उसने उन पर भार डालकर उनके पास कठोरता के साथ सेवा करवाई और जो पुत्र जन्म लेता उसको मार डालने का आदेश दिया। निर्गमन 1:14-16। मगर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उनको बढ़ाते गए। निर्गमन 1:8-21। इसराइल ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में मिस्र में 4 सदियां बिताई। अंत में परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके मूसा नामक एक लड़के का जीवन बचाया। परमेश्वर ने परिस्थिति को ऐसे अंकुश में ली कि वो लड़का फिरौन के सामने उसके घर में बड़ा हुआ। निर्गमन 2:1-10। मूसा राजकुमार के जैसे जीवन जीता था, पर एक दिन उसने एक इसराइली व्यक्ति को बचाने के लिए एक मिस्री व्यक्ति को मार डालने का बड़ा अपराध किया। इसलिए न्याय से बचने के लिए उसे मिस्र में से भाग जाना पड़ा। मूसा को मिद्यान नामक एक जंगल में नया जीवन मिला। परमेश्वर सीने पर्वत पर जलती हुई झाड़ी में उसको मिले और इस मुलाकात से उसके लोग और जगत का इतिहास बदल जाने वाला था। निर्गमन 3:1-15। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन का सामना करने के लिए मिस्र में वापस भेजा। उसे इसराइलियों को छुड़ाने की मांग करनी थी। परमेश्वर ने मूसा का बचाव करने का और बल देने का वचन दिया था। निर्गमन 3:16-22। बाकी की कहानी तो जगत की प्रसिद्ध बातों में से एक है। अगर आपने कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा है, फिर भी शायद आपने इस बात को सुना होगा या तो उसके विषय में चलचित्र देखा होगा। जब फिरौन ने इसराइलियों को जाने देने से इनकार किया, तब परमेश्वर ने मिस्र और उसके देवों के विरुद्ध संकट भेजे थे। निर्गमन 7:12। मिस्र की गुलामी में से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा का उपयोग किया था। जब मिस्रियों ने उनको मार डालने के लिए जंगल में उनका पीछा करने का निर्णय लिया था, तब परमेश्वर ने लाल समुद्र के 2 भाग किए थे। निर्गमन 13:17-14। लाल समुद्र में से पार जाना, ये तो बाइबिल में बताया गया एक अद्भुत चमत्कार है, मगर परमेश्वर ने यहां कोई खेल नहीं दिखाया था। परमेश्वर तो अपने लोगों की रक्षा कर रहे थे। परमेश्वर अपना परिवार चाहते थे। नियम और वफादारी। आखिर परमेश्वर ने मूसा के साथ जो बात की थी उसके अनुसार अपने लोगों को मिस्र में से बाहर लाए थे। वहां उन्होंने इसराइलियों को अपने नियम यानी कि 10 आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसराइलियों को जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उससे पहले ही वे परमेश्वर के लोग थे। जब मूसा ने फिरौन का सामना किया था तब परमेश्वर ने इन लोगों को अपनी प्रजा कहा था। निर्गमन 3:7, 4:23, 5:1, 6:7 और 7:4। नियम तो परमेश्वर के परिवार में स्थान प्राप्त करने का माध्यम नहीं थे। इसराइली लोग पहले से परमेश्वर का परिवार थे। हमें इस अंतर को समझने की जरूरत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के परिवार में स्थान प्राप्त करने के बदले लोग परमेश्वर के परिवार में रहना चाहते हैं, ये बताने के लिए परमेश्वर ने उनको नियम दिए थे। परमेश्वर के नियम तो इस बात को बताते थे कि वे लोग परमेश्वर के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे और दूसरे देवों की भक्ति नहीं करेंगे। अगर वे वफादार विश्वासी बने रहेंगे तो परमेश्वर उन्हें दूसरे देशों के आगे याजकों का राज्य निर्गमन 19:5 और 6 बनाकर उनका उपयोग करेंगे। मनुष्य अपने परिवार के सदस्य हो, ऐसी परमेश्वर की इच्छा थी। उन्होंने इसराइल के समूह से इसकी शुरुआत की थी। अगर वे वफादार बने रहें तो दूसरे देशों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। उत्पत्ति 12:3। इस वाचा को समझने का एक और दृष्टिकोण है। परमेश्वर उन पर प्रेम रखे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करना था। परमेश्वर ने पहले से इसराइल से प्रेम रखा था। व्यवस्था विवरण 7:7-8। परमेश्वर ने तो अलौकिक रीति से अब्राहम और सारा को पुत्र दिया था और उसके द्वारा आने वाले समय में इसराइल का निर्माण होने वाला था। मुख्य मुद्दा तो यह है कि परमेश्वर एक मानवीय परिवार की इच्छा रखते थे। वे परिवार के सदस्य बनने के लिए लायक बने, उसके लिए परमेश्वर ने उनको नियम नहीं दिए थे। वे तो पहले से परमेश्वर का परिवार थे। परमेश्वर के नियम तो इसराइलियों के प्रति परमेश्वर के विचार को बदलने के लिए नहीं दिए गए थे, पर परमेश्वर की संतानों को दूसरे देवों की भक्ति न करने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए और एक दूसरे के साथ शांति में रहने के लिए दिए गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने उनकी स्वतंत्र इच्छा को नहीं ले लिया था। परमेश्वर ने उनसे ऐसी अपेक्षा रखी थी कि वे प्रेम से उनको बनाने वाले एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करे और दूसरे देवों को छोड़ दे। इसराइल का कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर के प्रेम का इनकार कर सकता था। वे विश्वास न करने का चुनाव कर सकते थे। वे दूसरे देवों की उपासना करने का चुनाव कर सकते थे। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने ऐसा किया भी था। इसराइली लोग सीनै पर्वत, जहां परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, वहां से आगे चले तब परमेश्वर ने एक दूत के द्वारा उनको वाचा के देश में अगुवाई की थी। निर्गमन 23:20-23, न्यायियों 2:1। मार्ग में उन्होंने ऐसी फरियादें की थी कि हमारे पास पर्याप्त भोजन या पानी नहीं। परमेश्वर ने उनकी सब जरूरतों को पूरा किया था। निर्गमन 15:22-27, 16:1-30। उन्हें घातक शत्रुओं के सामने लड़ना भी पड़ा था, पर परमेश्वर ने उन्हें बचाया था। व्यवस्था विवरण 2 और 3, यहोशू 11:12, भजन संहिता 135:10-24, प्रेरितों 13:19। परिस्थिति और भी विकट हुई। आप शायद ऐसा विचार करोगे कि परमेश्वर इसराइलियों को वाचा के देश में लाएं, उसके बाद इसराइली लोग परमेश्वर के प्रेम को समझे होंगे और वफादारी के साथ उनके विश्वास की वृद्धि हुई होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले उन्होंने तो दुष्टता के साथ रहने का निर्णय किया। उन्होंने उस देश में से मूर्ति पूजकों को, यानी उस देश में रहने वाले और दूसरे देवों की उपासना करने वाले लोगों को बाहर नहीं निकाला था। मानो इसराइली लोग अपने भूतकाल के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे कि विद्रोह करने से समस्या आती है। उनकी बेवफाई और परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम का अभाव उन्हें इस निरुत्साही परिस्थिति में ले गए थे। यहोवा का दूत गिलगाल से बोकिम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले लाकर इस देश में पहुंचाया है, जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखों से शपथ खाई थी, और मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी न तोड़ूंगा। इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा न बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से न निकालूंगा, और वे तुम्हारे पांजर में कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। न्यायियों 2:1-3। परमेश्वर को फिर से अपने लोगों का न्याय करना पड़ा था। परमेश्वर ने मानो ऐसा कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो आओ अब देखते हैं कि तुम खुद कैसे इस काम को कर सकते हो। परमेश्वर जब उनके लोगों के साथ न हो तब उनका कितना बुरा होता है, यह हम पहले देख चुके हैं। हम फिर से इतिहास का पुनरावर्तन देख रहे हैं। इससे परमेश्वर का प्रतिभाव भी पहले जैसा ही लगता है। इसराइलियों को उनकी समस्या में से बाहर लाने के लिए परमेश्वर बार बार उनके पास वापिस आते हैं। हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं, शायद आप भी उनमें से एक होंगे। आपने कोई भी व्यक्ति के प्रति प्रेम की वजह से तर्क से विरुद्ध जाकर भी उनको सहायता की होगी। अगर आप परमेश्वर के इस कार्य के विषय में विचार करो तो आपको ये पागलपन लगेगा। पर वे परमेश्वर का इनकार करें तो भी परमेश्वर मानवीय परिवार की इच्छा रखते हैं। उनका प्रेम तर्क की उपेक्षा करता है। ऊपर जिस घटना की बात की गई है वो जिस पुस्तक में से ली गई है वो तो न्यायियों के पुस्तक में कभी भी अंत न हो ऐसा आत्मिक विद्रोह का घटना चक्र चलता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से जब दुख आते हैं तब वे परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उन पर प्रेम रखकर उनके पास आते हैं। कुछ सदियों तक यह घटना चक्र चलता रहता है। वो जब उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब इसराइली लोग शमूएल को, जो एक याजक और नबी था, उसके पास एक राजा की मांग करते हैं। लोगों ने राजा के तौर पर शाऊल की मांग की थी। यह एक आपदा थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक छिपे हुए इंसान को बाहर निकालकर राजा बनाया जाए तो यह चुनाव अच्छा नहीं होता। पहला शमूएल 10:22। अंत में परमेश्वर ने शाऊल के स्थान पर दाऊद का चुनाव किया था। दाऊद ने नैतिक रीति से भूल की थी, पर वो शाऊल से अच्छा था। उसने कभी भी परमेश्वर के साथ बेवफाई नहीं की थी और परमेश्वर के लिए उसका जो प्रेम था वो कभी कम नहीं हुआ था। उसने परमेश्वर के नैतिक नियमों को तोड़ा था, पर उसने पश्चाताप किया और कभी भी दूसरे देवों की उपासना नहीं की थी। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि उसके पुत्र इसराइल में कानूनी तौर पर राजा बन सकेंगे। यह वाचा तो दाऊद के राजवंश का सर्जन करने की वाचा थी। परमेश्वर सिर्फ उसके पुत्रों को ही कानूनी तौर पर राजा बनने के लिए स्वीकार करने वाले थे। दुखद बात तो यह है कि बाइबल में बताए गए इसराइल के इतिहास की बात में बहुत ऐसे लोग आए जो राजा के तौर पर योग्य न होने के बावजूद दाऊद की पीढ़ी के होने की वजह से राजा बने थे। दाऊद के पुत्र दूसरे देवों के पीछे चलने का चुनाव करके परमेश्वर के साथ बेवफाई करते थे, इसलिए परमेश्वर को उनमें से कुछ को दूर करना पड़ा। सिंहासन प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पारिवारिक इतिहास योग्य होने के साथ साथ दाऊद के संतान के तौर पर उन्हें परमेश्वर पर प्रेम रखना था। इसलिए हरेक राजा को उसके पास परमेश्वर के नियम की एक प्रतिलिपि रखनी थी। व्यवस्था विवरण 17:18। दूसरा राजा 11:12। उसे वफादार विश्वासी व्यक्ति का श्रेष्ठ नमूना बनना था। जमीन संपादित करने में और धनवानता में दाऊद का पुत्र सुलेमान इसराइल के इतिहास का सबसे महान राजा था। पर दुखद बात तो यह है कि सच्चे परमेश्वर के प्रति उसकी वफादारी में अस्थिरता थी। उसने दूसरे देवों को बलिदान किया और राजकीय संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए दूसरे देशों की लड़कियों से शादी की और इस प्रकार इसराइल में दूसरे देवों की उपासना की शुरुआत हुई। पहला राजा 11:1-8। दूसरे शब्दों में कहे तो सुलेमान ने आत्मिक बातों में समझौता करने की शुरुआत की और ऐसा विद्रोह किया जिससे पूरा देश बिगड़ गया। अंतिम विश्वासघात। सुलेमान की मृत्यु के बाद 12 कुलों में से 10 कुलों ने उसके अनुगामी के विरुद्ध विद्रोह किया। पहला राजा 11:41-12 अध्याय का 24वां पद। इसराइल का राज्य टूटे हुए घर के जैसा बन गया था। यह बात बहुत ही दुखद है कि बहुत राजाओं ने तो परमेश्वर के नियमों की प्रतिलिपि कभी भी देखी ही नहीं थी। दूसरा राजा 22:8-13। विभाजित देश का उत्तरी भाग यानी कि राजकीय रीति से विद्रोह करने वाले 10 कुल तुरंत ही आत्मिक रीति से भी विद्रोह करने लगे। पहला राजा 12:25-33 थे। जिस परमेश्वर ने उन्हें यह देश दिया था और अलौकिक रीति से उन्हें वहां बसाया था, उसके प्रति वफादार रहने की बजाय उन्होंने तो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इससे जिन नबियों ने पूरे देश में घूमकर नबुवत की थी, उन नबियों ने इन लोगों के आत्मिक विद्रोह की तुलना वैश्यावृत्ति और आत्मिक व्यभिचार के साथ की थी। वहां एक समान समरूपता थी। देश के दक्षिण भाग में जो दो कुल थे, वे भी धीरे धीरे आत्मिक विद्रोह करने लगे। धीमे धीमे किया गया पाप भी पाप ही है। परमेश्वर का त्याग करने से कभी भी अच्छा नहीं होता। बाइबिल एक जगह पर ऐसा कहता है कि जान रखो कि तुमको तुम्हारा पाप लगेगा, गिनती 32:23। परमेश्वर ने पहले जैसा किया था, वैसे ही अपने लोगों को उनकी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके उसकी परिस्थितियों की कीमत चुकाने दी। ईसा पूर्व 722 में देश का उत्तरीय भाग अश्शूरियों के द्वारा जीता गया। अगर आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स नामक चलचित्र देखा हो, तो अश्शूरियों ने किए आक्रमणों को मॉर्डोर ने किए हुए आक्रमण के जैसे सोचे। मुझे यह रूपक पसंद है क्योंकि अश्शूरी लोग उनकी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 10 कुलों को पूरे जगत में तितर बितर कर दिया और उनके परिवारों को तोड़कर उनका सब लूट लिया। लगभग 100 वर्ष के बाद ईसा पूर्व 586 में बाबेल के लोगों ने देश के दक्षिण भाग के 2 कुलों को जीत लिया। सैकड़ों इसराइलियों को जबरदस्ती से बाबेल में गुलाम करके ले जाया गया था। ईमानदारी से सोचें तो अगर इस समय में परमेश्वर अपने लोगों को भूल गए होते, तो हम इस परिस्थिति को समझ सके होते। क्योंकि अब्राहम की मौत के बाद सैकड़ों वर्षों तक बार बार उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था। जिसके लिए वे लोग लायक थे, उसकी समीक्षा को टालना कठिन है, पर परमेश्वर ऐसे कार्य नहीं करते हैं। परमेश्वर ने अभी भी अपना एक मानवीय परिवार हो ऐसी इच्छा रखने का निर्णय किया था, पर उनके लोगों को और दूसरे मनुष्यों को भी उनके परिवार में फिर से शामिल होने के लिए युक्तियों को बदलने की जरूरत थी। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ श्रेणीबद्ध वाचाएं बांधी थी, पर ये लोग तो स्वाभाविक मनुष्य थे। वे अनुमानित नियमितता के साथ कई बार निष्फल हुए थे। बाकी के मनुष्यों को तो अलौकिक व्यक्तियों को यानी कि व्यवस्था विवरण 32:8 के अनुसार परमेश्वर के पुत्रों को सौंपा गया था, और अब वे उनके सृजनहार और इसराइल के परमेश्वर के शत्रु बने थे। परिस्थिति जटिल बन चुकी थी। परमेश्वर के पास 2 भाग में इन सभी बातों का उपाय था। जब परमेश्वर के परिवार के संतान बंधुआई में गए थे, तब परमेश्वर ने 2 नबी यशाया और यहेस्केल को खड़ा किया था। उन्होंने लोगों को बताया था कि परमेश्वर उन्हें भूल नहीं गए हैं और परमेश्वर अपने बच्चों के साथ नई वाचा बांधेंगे और उनका आत्मा उसका चिन्ह होगा। यिर्मयाह 32:31-34, यहेस्केल 36:22-28। नया दिन आ रहा था, पर जो नया दिन आ रहा था वो कैसे परमेश्वर ने बांधी हुई पुरानी वाचा को दूर किए बगैर या उसे बदले बगैर सम्मान देगा, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। अधिकांश इसराइलियों ने परमेश्वर का इनकार किया था और दूसरे देवों की उपासना की थी। उन्होंने परमेश्वर की वाचाओं को तोड़कर परमेश्वर के प्रति अपनी नापसंद बताई थी। उन्होंने परमेश्वर को दुखी किया था। परमेश्वर अपने वचनों को सम्मान देना चाहते थे, पर उनके बहुत सारे बच्चे दूसरे देशों के देवों की उपासना करने की लालच में फंस गए थे। यह तो मृत्यु का मार्ग था। याद रखो कि अदन वाटिका में जो घटना घटी थी, उसकी वजह से हर एक मनुष्य को मरना था, और जब तक सच्चे परमेश्वर पर और उनके वचनों पर विश्वास न करें, तब तक उन्हें अनंत जीवन नहीं मिलने वाला था। बहुत सारे इसराइली इस बात को भूल गए थे। वे बहुत सारे देवों में से उनकी इच्छा के अनुसार के देव का चुनाव नहीं कर सकते थे। उन्हें तो सिर्फ एक ही सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना था और उस विश्वास में कायम रहना था। इसराइल में राजा आए तब परिस्थिति और भी बिगड़ गई। परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि उसके संतान सिंहासन के वारिस होंगे, पर उनमें से बहुत सारे तो परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर विश्वास की वफादारी की कमी को अनदेखा नहीं कर सके, वे अपनी वाचा को भी नहीं तोड़ सके। यह बात तो मानो ऐसा स्वीकार करने जैसी बात है कि यह सब कार्य एक बुरा विचार या इरादा था, पर सब कुछ जानने वाले परमेश्वर का विचार या इरादा बुरा नहीं हो सकता। तो फिर जिन लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया था, उनके हक में अपने वचनों को परमेश्वर कैसे पूरा करेंगे? उन्हें नए हृदय की जरूरत थी, उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत थी। उन्हें तो सनातन राजा और परमेश्वर की परिपूर्णता बताने वाला व्यक्ति बन सके ऐसे संतान की जरूरत थी। इस संतान को मनुष्य जाति से मृत्यु के श्राप को दूर करने की भी जरूरत थी। पर कैसे एक मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके? उसे परमेश्वर होने की भी जरूरत है। यह सब कैसे संभव हो सकता है? कोई ऐतराज नहीं।